أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب ہے کلندر شعور صفحہ نمبر 129 عنوان ہے اس چیپٹر کا تخلیقی فارمولے. پیچھے جو ہم نے پڑھا اب اس کے بعد یہ عملی کلندر شعور کو کیسے حاصل کیا جائے گا, اس کی عملی کاوشیں یا عملی کوششیں جو ہیں ان کی طرف آپ کو متوجہ کیا جائے گا. اب یہاں سے یہ کتاب کا تقریباً آخری حصہ 129 پیجز ہم نے 128 پیجز پڑھ لیے, اس میں آپ کا ذہن کا تانا بانا بن دیا گیا کہ کلندر شعور کسے کہتے ہیں, کلندر شعور کیا ہوتا ہے, یہ آزاد طرز فکر ہے, اس کی اساس جو ہے یہ بنیادی طور پہ قرآن کی تعلیمات ہیں, اور قرآن حکیم کی تعلیمات کا بھی وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں جو آپ اور میں جہاں تک پہنچ سکے یا ہم نے جہاں تک رسائی حاصل کی, بلکہ یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ فہم ہے, وہ فراست ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. تو اس کے زیر اثر ایک طرف آپ کو اپنے باطن کا پتہ ہو, اور ساتھ میں پھر باطن میں غیب سے آشنا ہو کر آپ نے تخلیقی فارمولوں کو سمجھنا ہے کہ کائناتی نظام سارے کا سارا تخلیقی فارمولے ہیں. تو تخلیق کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں, ہمارے ہاں تخلیق کا یہ مطلب لیا جاتا ہے, لیکن جو حضور کلندر باب اولیاء نے اس کی تشریح کی ہے خلق کی, تخلیق کی, تو در حقیقت آپ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تخلیق در حقیقت مقاصد اور تقاضوں کے ملاپ کو کہتے ہیں. مثال میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ گاڑی ہے, گاڑی کا پرپز ہے, اس کا ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ اس نے اپنے پیسنجرز کو یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے. اب وہ کیا سامان ہے اور کیا پیسنجر ہیں اسے چھوڑ دیں, ادھر دوسری طرف اس گاڑی کے کچھ تقاضے ہیں. تقاضوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی ضرورتیں ہیں, اس کو پیٹرول چاہیے, تو اس کو پانی چاہیے, تو اس کو ہوا چاہیے, تو اس کو تیزاب چاہیے بیٹری کے لیے, اور ساتھ میں اس کو موبل آئل چاہیے, گریس آئل چاہیے, گیئر آئل چاہیے, بریک آئل چاہیے. تو یہ چاہیے 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 کا ڈرامہ جو ہے یہ تقاضوں سے ریلیٹڈ ہے. تو جب آپ تخلیقی فارمولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ذہن میں جب بھی کسی چیز کا مقصد اور اس سے ریلیٹڈ تقاضے ذہن میں آنا شروع ہو گئے, یہ ہے تخلیقی فارمولے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ حضور مرشد کریم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ میٹر ایک ہے, تخلیقی قاعدے اور ضابطے اور طریقے ایک ہیں, مخلوق کے اندر طبعی تقاضے یکساں ہیں, مخلوق کے اندر طبعی تقاضے یکساں. یہ طبعی کیا ہے؟ اسی سے لفظ طبیعت ہے, اسی سے لفظ طبع ہے, یعنی چھپے ہوئے, طبع سے طباعت ہے. یہ لفظ طبعی تقاضے ہم نے اس کو فزیکل ارجز لیا, لیکن یہ جو اندر آپ کے چھپے چھپائے تقاضے ہیں اس کے کئی درجے ہیں, فزیکل بھی ہے, مینٹل بھی ہے, پھر اسپریچول بھی ہے. تو مخلوق کے اندر طبعی تقاضے یکساں ہیں, یعنی بھوک سب مخلوق کے ہر فرد کو لگتی ہے, وہ پورا کیسے کرتا ہے یہ علیحدہ بات ہے. طبعی تقاضے یکساں ہیں, سب مطلب ہے کہ ایکسکریٹ بھی کرتے ہیں تو برید بھی کرتے ہیں, تو یہ سارے طبعی تقاضے ہیں. عقل و شعور سب میں ہیں, یہ الگ بات ہے کہ کسی میں شعور زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں بہت کم ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر تخلیق کی انفرادیت اپنی جگہ قائم ہے, یہ ایک اور اہم نقطہ ہے کہ ہر تخلیق ایک طرف وہ نوعی ہے, یعنی پوری نوع کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, دوسری طرف ہر تخلیق اپنی جگہ ایک انفرادیت بھی رکھتی ہے. اب آپ اور میں بطور انسان بطور فرد کے ایک طرف پوری نو انسانی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کی کمپلیشن اور پرفیکشن کا یہ عالم ہے کہ کسی دو بندے کے کسی دو افراد کی فنگر پرنٹس ایک دوسرے جیسی نہیں ہیں, کسی کے کارنیا آنکھ کے ڈیلے کے اندر کا ڈیزائن ایک جیسا نہیں ہے. تو یہ ہے انفرادیت, یعنی ہر شخص ہر تخلیق کی انفرادیت اپنی جگہ قائم ہے. انفرادیت کے دو رخ ہیں. اب اس انفرادیت کے ہر فرد کے دو رخ ہیں, ایک رخ اجتماعی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا رخ الگ اور منفرد شخصیت کے روپ میں موجود ہے. یعنی یہ بات میں نے عرض کی نا کہ ہر فرد ایک طرف پوری نو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی شخصیت میں ایک انفرادیت رکھتا ہے. اجتماعی رخ کو ہم نو کا نام دیتے ہیں, انفرادی رخ کو ہم فرد کہتے ہیں. ہر نو کا ہر فرد الگ ایک حیثیت شکل و صورت رنگ و روپ اور نقش و نگار رکھتا ہے. مثال دیکھیں کہ طوطے کی نو کے تمام افراد کی شکل ایک ہے, کبوتر کی نو کے افراد کی شکل و صورت ایک ہے, اسی طرح اللہ کی جتنی بھی مختلف مخلوقات ہیں وہ نوعی اعتبار سے جو شکل و صورت رکھتے ہیں وہی شکل و صورت انفرادی ہے. یہ بات ایسی ہے کہ اس میں زیادہ تفکر اور تدبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, یعنی سامنے کی چیز ہے. انسانی مشاہدات ہر وقت صورت حال سے آشنا ہے. یعنی اس پیراگراف میں کیا بات فرمائی حضور نے کہ میٹر ایک ہے, ایک ہی میٹر سے ساری نوئیں بنی ہیں, اس میٹر سے نو کے آگے افراد ہیں. تو نوئی سطح پہ آپ منفرد ہیں, یعنی شیر شیر ہے, بکری بکری ہے, کتا کتا ہے, لیکن پھر آگے ہر کتا جو انفرادی طور پہ وہ دوسرے کتوں سے ڈیفرنٹ ہے. یا اسی طرح اگر ایک انسان بطور نو ایک انسان ہے تو کہیں وہ افریقی ہے, کہیں وہ آسٹریلوی ہے, کہیں وہ امریکی ہے, تو کہیں وہ ایشین ہے, تو کہیں وہ یورپین ہے. غور کریں, یعنی کہ یہ اس کے بعد پھر وہ ہر فرد کا ایک اپنا آئیڈینٹیفیکیشن ہے. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نوئی تنوع یعنی ویرائٹی, تنوع کہتے ہیں ویرائٹی کو, نو با نو ہونا, ویرائٹی ویریشن, یہ نوئی تنوع پر غور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نو کا مختلف ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نو کے خد و خال میں معین مقداریں کام کر رہی ہیں. یعنی ایک نو دوسری سے کیوں مختلف ہے؟ اب ایک گھوڑا ایک گدھے سے کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ گھوڑے کی مقداریں اور ہیں, گدھے کی اور ہیں. بکری اور گدھے میں کیوں فرق ہے؟ کیونکہ بکری کی مقداریں اور ہیں, گدھے کی مقداریں اور ہیں. اسی طرح کتے اور بکری میں کیا فرق ہے؟ تو کتے کی مقداریں اور ہیں, اسے ہم مقداریں کہیں گے. اس کو کہا ہے کہ نو کے خد و خال میں معین مقداریں کام کر رہی ہیں. آگے مثال دیکھیں کہ بکری کی نو میں اللہ نے جو معین مقداریں رکھ دی ہیں وہ جب متحرک ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بکری کی تخلیق ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بکری کے پیٹ سے کبوتر پیدا ہو جائے. یعنی یہ نو جو ہے وہ آگے اپنے خد و خال کو, اپنی خاصیتوں کو, صلاحیتوں کو آگے اپنے افراد میں منتقل کرتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بکری کے پیٹ سے کبوتر پیدا ہو جائے. یہ معین مقدار ہے, نہ صرف زمین کے اوپر موجود مخلوق میں نظر آتی ہیں بلکہ کائنات کی ہر تخلیق کے ہر جزو میں یہ مقداریں کام کر رہی ہیں. کائنات کی ہر تخلیق کے ہر جزو میں یہ مقداریں کام کر رہی ہیں. اب ذرا سا غور کریں, آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ کی جو مقداریں ہیں वो पैरों की मिकदारों से डिफरेंट हैं, जो आपके होंठों की मिकदारें हैं वो आपकी आईलिड से डिफरेंट हैं। हालांकि आप देखें पलकें, आंखों की जो पलकें हैं ये तकरीबन होंठों जैसी हैं, लेकिन होंठों के फंक्शंस और हैं, इनकी मिकदारें और हैं, आईलिड्स की मिकदारें और हैं, वाला हाजल कयास आपके पैरों की उंगलियों की मिकदारें और हैं, हाथ की उंगलियों की मिकदारें और हैं। यानी कि कहा कि हर तखलीक के हर जुज्व में ये मिकदारें काम कर रही, और इन मिकदारों का अहम काम यह है कि ये जब आपस में रद्दोबदल होती हैं या इनका आपस में एक दूसरे के अंदर इंजज़ाब होता है, यानी ये मिकदारें जब एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाती हैं तो मुख्तलिफ रंग इख्तियार कर लेती हैं। गौर करें, यह है रंगों की कि ये असल में आपकी सलाहियतें हैं जो एक दूसरे में जज्ब होती हैं, तो उसके नतीजे में ये मुख्तलिफ रंग बनते हैं और इन्हीं रंगों को फिर मिकदारें कहा गया। और अगला जुमला देखें, जब आपस में रद्दोबदल होती, इन मिकदारों का अहम काम यह है कि जब ये आपस में रद्दोबदल होती हैं या इनका आपस में एक दूसरे के अंदर इंजज़ाब होता है, जज्ब हो जाती हैं, तो मुख्तलिफ रंग इख्तियार कर लेती हैं, और ये रंग ही दरअसल किसी नौ के खदो खाल बन जाते हैं। ये है सारा खेल कि रंग बनते हैं, इन रंगों की वजह से मादा वजूद में आता है, चूंकि पीछे मिकदारें मुख्तलिफ हैं लिहाजा उससे बनने वाली हर चीज मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने की पाबंद है। हजूर कलंदर बाबू अलिया रहमतुल्लाह अलैह ने तखलीकी फार्मूलों की वजाहत इस तरह की है। अब जरा गौर करें कि मुर्शिद करीम हजूर कलंदर बाबू अलिया इमाम सिलसिला के अल्फाज में फरमा के अल्फाज में तखलीकी फार्मूलों की वजाहत कर रहे हैं। फरमाया, और ये कोट यानी कोटेशन के तौर पर है, कायनात में मौजूद तमाम मादी अजसाम, कायनात में, पहले तो कायनात आपके जहन में आई, फिर उसमें मौजूद मादी और गैर मादी में से इस वक्त बात हो रही है सिर्फ मादी अजसाम की, तो मादी अजसाम लाशुमार रंगों में से मुतअद्दद रंगों का मजमुआ होते हैं। यानी रंग तो लाशुमार हैं, यानी उनको कोई शुमार नहीं कर सकता। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज है इनएस्टिमिएबल, इनको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये उनमें से मुतअद्दद, मैनी ऑफ द इनएस्टिमिएबल कलर्स में से ये कुछ मजमुआ बनता है। अब ये रंग क्या है? ये रंग नस्मा की मखसूस हरकत से वजूद में आते हैं। ये रंग कैसे बनते हैं? ये असल में नस्मा की मखसूस हरकत को कहा जाता है, या मखसूस हरकत से वजूद में आते हैं। नस्मा, आगे ऊपर ब्रैकेट में औरा लिख दिया, क्योंकि ये आज के दौर में औरा का तस्करा बहुत होता है। औरा असल में हवा के एक ऐसे बगोले को या हेवले को कहते हैं जो बज़ाहिर नजर ना आए। औरा और है, नस्मा और है। नस्मा दरअसल मख्फी रोशनी है, हमारा जहन जाहिर नजर नहीं आ सकता, लेकिन ये जो नस्मा का डिस्प्ले है उसको समझने और समझाने के लिए औरा का नाम दिया गया। औरा अंग्रेजी का लफ्ज है, यहाँ पे बात हो रही है नस्मा की। नस्मा अगर करंट मान लिया जाए तो स्पार्किंग जो है उसको हम औरा कह सकते हैं। हजूर फरमाते हैं कि नस्मा की मुय्यन तवालत हरकत से एक रंग बनता है, यानी जहन की एक मुय्यन वेवलेंथ या लेंथ ऑफ वेव, तवालत हरकत से एक रंग बनता है, यानी एक वेवलेंथ से एक रंग बना, दूसरी वेवलेंथ से दूसरी, वो कितनी वेवलेंथ या कितनी फ्रीक्वेंसियां जनरेट करता है जहन, ये सारा जहन का कमाल है। नस्मा की मुअय्यन तवालत हरकत से एक रंग बनता है, दूसरी तवालत हरकत से दूसरा रंग, इस तरह नस्मा की लाशुमार तवालतों से लाशुमार रंग वजूद में आते रहते हैं। अब इन रंगों का अददी मजमुआ, यानी उनका न्यूमेरिकल सम जो है, यानी कि जो उनका अददी मजमुआ हर नौ के लिए अलग अलग मुअय्यन है। अददी मजमुए का मतलब है कि अगर बकरी में 10 किस्म की वेव चाहिए तो उससे 10 किस्म की वेव से बकरी बनेगी, इंसान को अगर 23 किस्म की वेव चाहिए तो उसे 23 किस्में जब मिलेंगी तो इंसान वजूद में आएगा, उसे बकरी या सांप नहीं बन सकता। ये है अलग अलग मुअय्यन, यानी रंगों का अददी मजमुआ। एक तो कौन कौन से रंग और दूसरे वो किस किस मिकदार में, इसको अददी मजमुआ का है वो मुअय्यन है। उतनी तादाद में और उतने रंग एक जगह जमा होंगे तो एक नौ बनेगी। अगर गुलाब के लिए रंगों का अददी मजमुआ अलिफ मुअय्यन है, अब अलिफ का मतलब है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सपोज ए, एक क्वांटिटी जो है यानी के एक मिकदार जो रंगों की तादाद और उनकी मिकदारों को जाहिर करती है, उससे गुलाब वजूद में आता है, कोई और शय वजूद में नहीं आएगी। अगर आदमी की तख्लीक रंगों की जीम तादाद से होती है तो इस मिकदार से कोई दूसरा हैवान नहीं बन सकता, सिर्फ नौ इंसानी ही के अफराद वजूद में आ सकते हैं। ये कानून तख्लीकी फार्मूले के जेल में वजाहत से बयान कर दिया गया है। अब इसको समझना और इसको जहन नशीन करना ये कलंदर शऊर के हर स्टूडेंट पे वाजिब है। आलम में रंग में जितनी अशिया पाई जाती हैं वो सब रंगीन रोशनियों का मजमुआ है। आलम में रंग में हम जिस आलम में जिंदा हैं इसको आलम में रंग कहते हैं, और यहाँ जितनी भी अशिया पाई जाती हैं ये सब की सब, कोई ऐसी नहीं है जो रंगीन रोशनियों का मजमुआ ना, यानी हर चीज के पीछे असल में रंग काम कर रहे हैं या रंगीन रोशनियां काम कर रही हैं, और इन्हीं रंगों के हजूम से, हजूम मैंने मिलना, एक जगह इकट्ठा होना, अरबी में हजूम अल हजूम यानी हमला करो तो इन्हीं रंगों के हजूम से वो शय वजूद में आती है जिसको उर्फ आम में मादा कहा जाता है। देख लीजिए मादे की असल क्या हुई, रंगों का हजूम। मादा क्या हुआ, रंगों का हजूम, एक जगह जमा हो जाना। जैसा कि समझा जाता है मादा कोई ठोस चीज नहीं है, यानी जैसा लोग समझते हैं कि मादा कोई ठोस चीज है, फरमा रहे हैं कि ये नहीं है, ठोस चीज नहीं है। अगर इसको शिकस्त और रिख्त करके इंतहाई मिकदारों तक मुंतशिर कर दिया जाए तो महज रंगों की जुदागाना शुआएं बाकी रह जाएंगी। अब ये साइंस कह रही है, ये साइंस भी यही कह रही है कि इफ द मैटर कुड बी ब्रोकन डाउन टू इट्स इंटायरिटी, यानी उसको मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया जाए तो महज रंगों की जुदागाना शुआएं बाकी रह जाएंगी, यानी डिफरेंट वेव्स ऑफ कलर विल रिमेन। रंगों की, यानी ये मट्टी जो है ये असल में रंगों की आमेजश का नाम है, जब मट्टी को तोड़ेंगे तो रंग ही तो निकलेंगे। अब आप इस पे गौर करके देख लें कि आप एक ही मट्टी में मुख्तलिफ पौधे लगाते हैं, उसमें जो फूल निकलते हैं सब डिफरेंट होते हैं, तो वो फूलों को रंग कहाँ से मिल रहा है, उस मट्टी से। अगर बहुत से रंग लेकर पानी में तहलील कर दिए जाएं तो एक खाकी मरकब बन जाएगा जिसको हम मट्टी कहते हैं। ये साफ लिखा हुआ है, हजूर कलंदर बाबौलिया ने ये बात वाजे कर दी कि अगर हम मुख्तलिफ रंगों को आमेजा बनाएं, एक जगह लेके घोलें, तो जो हमें मरकब मिलेगा वो खाकी रंग का होगा। अब इसी खाकी रंग को हम खाक या मट्टी कहते हैं। घास पौधों और दरख्तों की जड़ें पानी की मदद से मट्टी के जर्रात की शिकस्त और रिख्त करके, यानी इनको तोड़ फोड़ कर इन्हीं रंगों में से अपनी नौ के रंग हासिल कर लेते हैं। यानी घास पौधे और दरख्त क्या करते हैं, उनकी जड़ें पानी की मदद से मट्टी के जर्रात को तोड़ फोड़ कर उनमें से अपनी नौ के रंग अखज कर लेती है, ये करते हैं। और वो तमाम रंग पत्ती और फूल में नुमाया हो जाते हैं, यानी उस दरख्त के पत्तों में और उसके फूलों में नुमाया हो जाते हैं। तमाम मखलूकात और मौजूदात की मजहरी जिंदगी इसी कीमियाई अमल पर कायम है, इसे कीमियाई अमल कहा है। जड़ें जब पानी की मदद से मट्टी के जर्रात को तोड़ फोड़ कर उनसे अपनी नौ के मुताबिक रंग अखज कर लेती हैं, तो इसी को कीमियाई अमल कहा गया है। और ये फरमाया कि तमाम मखलूकात और मौजूदात की मजहरी जिंदगी इसी कीमियाई अमल पर कायम है। रंगों की तादाद 11,000 है। मैटर एक है, डाइयां मुख्तलिफ हैं। तखलीक इस तरह अमल में आई है कि डाई मैटर को अपने अंदर महफूज करके इस तरह मुतहरिक करती है के मैटर मुख्तलिफ और मुअय्यन मिकदारों में तब्दील हो जाता है। ये जुमला बहुत तवज्जो से समझे कि मैटर एक ही है, डाइयां मुख्तलिफ हैं। फरमाया कि तखलीक इस तरह से अमल में आती है कि डाई मैटर को, मादे को अपने अंदर पहले तो महफूज कर लेती है, अपने अंदर समेट लेती है, फिर इस तरह मुतहरक करती है, यानी उसके अंदर एक तहरीक पैदा करती है कि वो मैटर मुख्तलिफ और मुअय्यन मिकदारों में तब्दील होता चला जाता है। और जब ये मुअय्यन मिकदारें एक दूसरे में मिलकर जज्ब होती हैं तो कोई एक रंग बनता है, और जब एक रंग दूसरे रंग में जज्ब होता है तो तीसरा रंग बनता है। नतीजे में बेशुमार रंग वजूद में आते हैं, और ये बेशुमार रंग ही अल्लाह की कायनात हैं। अब यहाँ पे गौर करें, इस पैराग्राफ का उन्वान था रंगों की तादाद 11,000 है। असल में ये तादाद औलिया कराम ने अल्लाह की सिफात की बताई है कि 11,500 के करीब अल्लाह की सिफात है, यानी इंसानी जहन अल्लाह की जिन सिफात का अहाता कर सका उनका एक अंदाज़ा है। और हर सिफत एक रंग है, हर सिफत असल में एक रंग को जनरेट करती है। ये है सारी बात, यहाँ तक रुक जाते हैं। फिर इंशाल्लाह जो अमली इसका ये सेल्फ चैप्टर सेगमेंट शुरू होने वाला बिजली का बहाव, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रीडिंग सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो फरमा दीजिए। जी भाई, नो क्वेश्चन।
सर
जी, वालेकुम सलाम।
आवाज आ रही है
जी? मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? मैंने कहा मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? नहीं सुनाई दिया, सॉरी, दोबारा फरमाइए। हेलो
सर, वो उनका नेट शायद प्रॉब्लम कर रहा है, उन्हें आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, तो वो कह रहे थे कि सवाल है मगर शायद नेट का कोई इशू।
चले वो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, जितनी देर में आप पूछना चाहें तो आप फरमा दें।
सर बहुत सारी चीज़ें आ रही है मगर अभी क्वेश्चन उस तरह नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह आपसे फिर मैसेज पे पूछता
हूँ। ओके
थैंक यू सर
जी। चलें फिर यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
जी सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह
हाफिज सर।
जी आ रही है, हुक्म। हमें तो आपकी आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही।